पर हुआ है, यहाँ तक कि नास्तिकों को भी उन्होंने प्रेम दिया। अब किसको प्रेम दिया जाए? इसलिए नाप बिकाए चावल
पावल के कहियो काजे नहीं कहाऊ,
अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसका तात्पर्य क्या? महाप्रभु जी से लोगों ने पूछा कि इसका क्या तात्पर्य हुआ जो पत्र आया है? महाप्रभु शांत और गंभीर हो गए, कुछ मौन हो गए, सिर थोड़ा सा नीचे हो। बाकी में क्या? तो उन्होंने कहा, जब पूछा गया जी इसका क्या तात्पर्य है, हमारी समझ में नहीं आता, उन्होंने कहा जी भाई एक पुजारी है, पूजा के लिए ठाकुर जी का आह्वान किया, अब पूजा की जब पूजा पूरी हो गई अब उसका विसर्जन करना है, यही तो बात है, इसमें तो कोई बात नहीं। तो भी नहीं किसी ने समझा, स्वरूप दामोदर जी केवल, किंतु इतने गंभीर जी कहेंगे नहीं। अर्थात महाप्रभु जी को बुलाया इन्होंने, पुजारी है द्वैताचार्य, पूजा करने के लिए अपने इष्ट देव महाप्रभु जी को राधा कृष्ण को बुलाया, अब उनकी पूजा समाप्त हो गई, अब विसर्जन का समय है, अर्थात अपने धाम में अब जाने की तैयारी करेंगे। ये सुन करके महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और समझा जैसे अब हमको अपने धाम में लीला को प्रकाश करना पड़ेगा। बड़े महाप्रभु भाव में गंभीर हो गए और तब से लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, एकदम 24 घंटा एकदम भाव में विभोर रहने लगे, गंभीरा में, और कभी नाक घस घिस रहे हैं, कभी एकदम भाव में होकर समुद्र में डूब जाते हैं, कभी जगन्नाथ वाटिका में भाव में भी भोग करके बंसी सुन रही है वहाँ, इस तरह के भाव होने लगे। कुछ दिनों के बाद में टोटा गोपीनाथ में गोपीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और फिर वही पता ही नहीं चले जी महाप्रभु का। इस प्रकार से गोपीनाथ के सी अंग में अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के अप्रकट होने के बाद भी 25 साल तक थे, और 25 साल उन्होंने महाप्रभु जी के अवशिष्ट कामों को जो प्रचार करने का था ये प्रचार किया था। इसके बाद में श्रीनिवास आचार्य जब आए, अद्वैताचार्य उस समय थे, नित्यानंद प्रभु जी भी थे, किंतु उन्होंने वहां से छोड़ दिया और चले गए शांतिपुर बना। शिवास पंडित जो थे उसको छोड़ करके नई हाट में चले आए, जितने भी भक्त थे उस स्थान को छोड़ करके, क्यों? नंद बाबा जैसे, जो नंद बाबा ने नंद गांव जैसे छोड़ दिया, उनका प्रत्येक चीज उनको अब काटता था उनके, इसी तरह से इन लोगों ने भी वो स्थान को छोड़ दिया, पूरी का स्थान भी छोड़ दिया, धीरे 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 अलग अलग स्थानों में रह करके किसी प्रकार से भजन करने लगे, कुछ लोग सब वृंदावन में आने लगे। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भी वृंदावन में आ गए और सब वैष्णव लोग रूप रस सनातन इनको केंद्र बिंदु करके फिर अद्वैताचार्य इसके बाद में वो भी अप्रकट हो। इस तरह से अद्वैताचार्य महाविष्णु हैं, प्रेम को प्रचार करने के लिए महाप्रभु बुलाए, वो परम कृपालु हैं, सब समर्थ हैं, इसलिए आज हम उनके चरण में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। वो कृपा करें हम पर, हमारे अनर्थ दूर हों, वैष्णव को हरि गुरु वैष्णव को सम्मान देते हुए यथासाध्य भजन में हम लोग प्रविष्ट हों, महाप्रभु की विचारधारा को समझ सकें, यही उनसे हम प्रार्थना करके वक्तव्य समाप्त बंझा कर। Thank you. कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया या समझ में आया कि तो अनुभूति में भी अब मैं कृपा करता हूँ तुम्हारी इसमें प्रतिष्ठा हो जाए। और वैसे ही तत्वविद जो गुरु हैं वो भी सब समझेंगे। यदि तत्वविद पूरे नहीं हैं, उत्तम अधिकारी नहीं हैं, मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी भी तो कुछ तो समझेंगे, नहीं बोलने से वो सब। इसलिए क्रमशः उन्नत पद पर चलने के लिए श्रद्धा की जरूरत। इसलिए कहा गया आदो श्रद्धा, विशेष करके विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जी ने माधुर्य कादम्बिनी में एक श्लोक के ऊपर में ही पूरी माधुर्य कादम्बिनी, वो श्लोक क्या है आदो श्रद्धा। यहां तक लो अपने गुरुदेव तक सब परिकर है, ये सब गुरु वर्ग हमारे वैष्णवांश, ये वैष्णव ही हैं गुरु वर्ग और सब वैष्णव जो निष्कपट रूप में हरिनाम दीक्षा लेकर के संबंध से युक्त होकर के निंदा इत्यादि अनर्थों अपराधों से दूर रह करके, कुछ कुछ अनर्थ तो रहेंगे किंतु ये सब जो है नमापराध से रहित और संबंध युक्त रहित होकर, द्वेष आदि अवगुणों से रहित, निंदा इत्यादि से रहित होकर के भजन करेगा, भजन जाएगा कहाँ, जरूर हो जाएगा। और ये यदि उसकी जड़ ही कट गई तो फिर मुश्किल। इसलिए श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में क्या हो रहा है, भजन करो, आगे बढ़ने की चेष्टा करो, सब वैष्णवों का यथा योग्य आदर देना सीखो, सीख करके इस तरह सीखो। चैतन्य चैतामृत में इसलिए पहले ही वैष्णवों की वंदना की, पंचतत्व की वंदना की, ए सब अमर की शिक्षा गुरु जी हमारा,
गुरु शिक्षा गुरु जी हमारा,
ये पांचों छह
बार पाद पद में कोटि नमस्कार।
सेवा करता है गुरु माने वैष्णव, सब गुरु की सेवा करता है, श्रद्धा से हरिनाम करता है और श्रद्धा से सब सेवा करता है, सभी पैखाना साफ से लेकर के रसोई से लेकर और सब काम बड़ी श्रद्धा के साथ में करता है। ये भगवान की, गुरु की, वैष्णव की ये सेवा है, इसे हमारा यही हमारा भजन है। एक तरफ में ऐसा वैष्णव कोई और दूसरी तरफ में भागवत का परम ज्ञाता, वेदांत को जानने वाला और वक्तृता देने वाला भी, बुद्धिमान, किंतु वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति वैसी श्रद्धा नहीं है। 3 लाख हरिनाम करते हैं जो अकेले हम हरिनाम करके ही पा जाए, और शास्त्र का दिन रात अध्ययन करते हैं, दोनों में कौन बड़ा हुआ, पहला या दूसरा? इस चीज को समझो, इसलिए विद्वता पर भक्ति निर्भर नहीं है। वो है कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति ममता और प्रीति के ऊपर। यह प्रति, यह भगवान की लादनी और संबित शक्ति की वृत्ति है। इसलिए कल परसों बतलाते हैं, ये वो जो भक्ति लता का बीज, जो कृष्ण सेवा की वासना है, ये क्या चीज है? वो स्वरूप शक्ति की ये वृत्ति है, परम स्वतंत्र है। देखेगी जैसे ये विरुद्ध आचरण कर रहे हैं तो वहां से हट जाएगी। देखेगी जिसमें श्रद्धा है, चल रहा है ठीक से, उसको बढ़ा दी। इन सब पर भक्ति स्वतंत्र वृत्ति है, इसलिए खूब सावधानी के साथ में भजन करने की चेष्टा करो। विद्या और ये इस पर निर्भर अधिक मत रहना। भाई कौन सा था? सेवा की वासना बढ़ते बढ़ते ले आए हैं यहां महाप्रभु जी के, वो जो राधा या प्रणय महिमा की दृश्य वा अनेय वा स्वाद्दो, ये द्वितीय पंचा के संबंध में यहाँ पर बोलते हैं। अद्वैताचार्य तो मुख्य के गौण हैं, उनका महाप्रभु जी को लाना, महाप्रभु जी के अवतार। ये प्रथम वंशा हुई राधा या प्रणय महिमा। राधा जी की प्रणय की महिमा कैसी है, कृष्ण के प्रति उनकी कैसी अद्भुत उनका प्रणय है, जिसे बाध्य होकर के कृष्ण जगत में अवतरित हो गए। कृष्ण लीला में इस चीज को नहीं समझ सके, ये समझे महाप्रभु जी। सबको लुब्ध कर देता है, विशेष करके सबसे लुब्ध करता है ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों में से भी सखाओं को, उनसे भी अधिक यशोदा मैया नंद बाबा, और उनसे भी गोपियों को, उन गोपियों में भी चंद्रावली इत्यादि और राधा जी, और उन दोनों में भी श्रीमती राधिका को। ये कैसा मरा माधुर्य है जिसका आस्वादन करते हैं भक्त। भजन के प्रारंभ से भजन में भी एक माधुर्य है, जिस साधक को भजन में कुछ माधुर्य का आस्वादन होगा वो समझे वो रुचि हो गई है, और जिसको रुचि नहीं है रुचि नहीं है। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर माधुरिमा त्रि जगते इहार के हो नहीं दीते पारे सीमा, ये प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली अमार माधुर्य अमृत आस्वादेश कर, हमारे माधुर्य अमृत को आस्वादन कर। कृष्ण मानो जिस समय में गोपियों को दर्शन देने के लिए आए, प्रगायांतश्च इति मनमथ मनमथ उसी समय में कंस आ जाता, अघासुर बकासुर आ जाते, तो उनको प्रेम हो जाता कि नहीं, माधुर्य का आस्वादन करते,
उनको जम के समान देखते
हैं। इसी तरह से समझो, यदि ब्रह्माते तो उनको वो प्रेम उत्पन्न हो जाता नहीं होता, ये किसको हुआ, जिसमें आधार है, आधार माने महाभाव है, वो उसको महारस राज रूप इत्यादि के रूप में देखेगा, दूसरा नहीं देख सकते। हम लोगों को भी उस समय यदि दर्शन करेंगे ना तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, या उनको साधारण आदमी समझेंगे, इसलिए हाँ कोई ऐश्वर्य उनका देखा या कुछ ऐसा हुआ, इसलिए अनुभूति नहीं होगी। इसलिए प्रेम की जरूरत, प्रेम प्रयोजन है, किस लिए, उस माधुर्य को आस्वादन, इसलिए प्रेम की प्रयोजन है, अन्यथा बिना उस प्रेम के, यह प्रेम जितने ही उत्तरोत्तर अधिक होगा उतना ही अधिक उसका आस्वादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए इसको कह रहे हैं ये एकली श्रीमती राधिका जी सबसे अधिक रूप में आस्वादन करती हैं। यद्यपि निर्मल राधा सत प्रेम दर्पण तथापि स्वच्छता बाढ़े तारे खने खने ख हमार माधुर्य नहीं बाढ़ते अवकाश ये दर्पण आगे नौ नौ रूपे भाषे। यद्यपि कृष्ण का माधुर्य इतना है कि आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, किंतु इनकी आस्वादन का लोभ ऐसा है, दर्पण ही ऐसा है जो कृष्ण के माधुर्य को बढ़ा देता है, इनका भी नहीं है अवकाश। इतना अधिक माधुर्य आस्वादन करने की लालसा और उनमें इतना माधुर्य, दोनों में होड़ लग करके क्रमशः बढ़ते हुए चले जाते हैं। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होड़ करी खने खने बढ़े दोहे केहो नहीं हारी, दोनों में कोई नहीं हार, कभी वो जीतता है कभी वो जीतता है। अमार माधुर्य नित्य नव नव है अपरिकलित पूर्वम कश चमत्कारी इत्यादि हमने वर्णन किया। गोपेश्च कृष्ण वफलभ्य चिराद अभीष्टम यत् प्रेक्षणे दिशेषु पक्षकृतम सपन्ति दृग्भि हृदि कृतम अलम परिरभ्य सर्वा तभाव मापुरमपि नित्य जुजांग दुरापम। नित्य जुजांग दुरापम जो योगी लोग हैं जो सब समय हृदय में उनसे युक्त रहते हैं, उन लोगों के लिए तद्भावम अपूरम दुरापम, वो उनके लिए दुरापम माने दुर्लभ है। उन नित्य योगी ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी और योगियों के लिए वो अत्यंत दुर्लभ है। कौन सा, गोप्यश्च कृष्ण उपलब्ध है, सूर्य ग्रहण के बाद में गोपियों ने कृष्ण को देखा, बहुत चिराद अभीष्ट बहुत दिनों के बाद में अपने अभीष्ट कृष्ण को उपलब्ध निकट में पा करके एकदम क्या किया उन्होंने, दृग्भि हृदि कृतम अलम, आंखों के माध्यम से कृष्ण को हृदय में लेकर परिरब्ध सर्वा, कृष्ण की सर्वांग को हृदय में लेकर के और आलिंगन कर लिया। और जत प्रेक्षणे दृशेषु पक्ष कृतम सपन, आंखों में आंसू भराया, आंख को साफ दे रहे, आंख में पलके गिर रही उसको साफ, आंख में पलक है इसलिए जो बनाने वाला है उसको साफ दे रही, अपने को भी ब्रह्मा को भी पक्षकृतम सपंती। ये गोल गोपियों में ही संभव है, दूसरों के लिए संभव नहीं। अटति जदमान अन्हिकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्षकृत दिशा। श्रीमद भागवत के एकादश 31 अध्याय के 15वें श्लोक को बतला रहे हैं। अटति जद भवान, गोपियां कर रहती हैं, भवान अन्हि काननम अटति, भवान माने जब आप कृष्ण के लिए करें, भवान आप जब गोचारण करने के लिए गोचारण में सखाओं और गायों के साथ में या बछड़ों के सहित में जब कानन में प्रवेश करते हैं जाते हैं या वहां से लौट करके जब आ रहे हैं, त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यता, उस समय जब चले जाते हैं तो आपके दर्शन से त्रुटि जुगायते, एक त्रुटि का समय एक युग के समान बीतता है, त्वाम अपश्यतम आपको नहीं देख करके। और जब वहां से आते हैं, आने के बाद में आंखें की पलके गिरने से आंसू आने से या कुछ मूर्छित होने से भी नहीं देख पाते, उसमें भी एक एक क्षण युग के समान लगता है। और जब मिलन होता है उस समय में योग युग एक क्षण के समान, ये किस चीज का लक्षण है? महाभाव का ये लक्षण, जिसमें महाभाव होगा वो समझेगा। द्वारकावासियों में कभी कभी कदाचित महाभाव, महाभाव की छाया। द्रौपदी पांडव में ये महाभाव नहीं है, जशोदा मैया में भी ये भाव नहीं है, नंद बाबा में भी, सुबल सिद्धाम में से कभी कभी सुबल मधुमंगल इत्यादि को हो सकता है, ये इनको हो सकता है, इससे बाद में इन लोगों को नहीं। मतलब ऐसा ये महाभाव गोपियों, इसलिए यहाँ पर कह रही है वही अठत जद भवान अन्ही काननम, अन्ही मैंने काननम त्रुटि जुगायते ताम अपश्यताम, आपको न देखने से ऐसा। हम लोगों को ऐसा होता है अपने गुरुजी को नहीं देखने से, उनके गुरुजी के बिना भी काम चल रहा है, क्यों? प्रीति नहीं है। विरह कब होगा? जब उनके बिना काम नहीं चल, हृदय एकदम आकृष्ट है। किसी वैष्णव के लिए ऐसा होता है तो हम भजन क्या करेंगे? अंततः किसी वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति तो इतना होना चाहिए ना, जैसे उनका संग नहीं हो रहा है। आज यदि नहीं है तो बड़े सुख से जीवन यापन हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है? अनर्थ हम लोगों में है, अपराध भी है, अभी रुचि नहीं आई, आसक्ति नहीं आई। नहीं तो पहले ये वैष्णव पर होगा, फिर गुरु के ऊपर में होगा, तब फिर भगवान के। जब गुरु वैष्णव के प्रति नहीं है, भक्ति के प्रति नहीं, भक्ति नहीं है तो इसलिए हाय हाय नहीं है, तो हाय हाय भक्ति नहीं है। इसलिए कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष कृतिशाम, आपके मुख मुखारविंद कुटिल कुंतल, ये तो है भ्रमर, और ये सुंदर मुखारविंद है कमल, कमल के ऊपर में वो जैसे अलके, और ऊपर से पाउडर धूल धूसित गऊओं के खूब से, और भी सुंदर लग रहा है। ऐसे मुख को देख करके जड़ उदीक्षता, ये ब्रह्मा जी जड़ हैं, जिन्होंने पक्षकृत, पक्षकृत माने मूर्ख हैं, जड़ हैं, उनको ज्ञान नहीं रहा, ये कैसा बनाना चाहिए। यदि हमें होता है इसका तो हम ब्रह्मा जी को कोटि आंखें दे करके ये बतला देती जो है सृष्टि कैसी होनी चाहिए। कृष्ण अवलोकन बिना नेत्रे नहीं फलान, जे जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान, आंखों का फल एकमात्र कृष्ण का ही दर्शन है। ये सब कौन कह रहा है? ये गोपियों का अतिरिक्त दूसरा कहने का अधिकारी नहीं है। हम लोग क्यों कह रहे हैं, सुन रहे हैं? यदि एक छींट कहीं कोई छींट आ जाए, ऐसा थोड़ा सा लोभ हो जाए हृदय में, इसलिए अखनतांग फलमिदम न परम विदाम सख्या पशुन अनु विवेश यतोर वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेनुजुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, इसकी व्याख्या हमने पहले की थी। अक्षनतांग फलम न परम विदाम, आंखों का फल दूसरा कुछ है हम नहीं जानती। अक्षमतांग जिनको आंखें हैं, उन आंखों का फल क्या है? इदम यही है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो क्या है यही? सख्य पशुन अन्य विषय तोर वयस्यी वक्त्रम जत ब्रजेश सुते अनुबेनुजुष्टम जैवा निपीतम अनुरक्त कटाक्षम। कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हो, चारों तरफ से सखा उनको घेर रखे हैं, लाखों लाखों करोड़ों गायों का समूह जा रहा हो, धौली और श्यामली और ये सब, और वो हम्बा कर रही हूँ, और उसमें कृष्ण बंसी बजा रहे हों, ने? और ब्रजेश सुतयो, ब्रजेंद्र नंदन के दोनों पुत्र हों सुतयो, जो बंसी बजा रहे हों कृष्ण बलदेव, उनको उस समय में जैवा निपीतम, उनके मुख से बंसी की आवाज निकल रही है, सुंदर मुखारविंद है, उसको जिसने इन आंखों से पिया निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अत्यंत अनुरक्त प्रेमपूर्ण कटाक्ष से वो देख रहे हों, कटाक्ष का मोक्ष माने छोड़ रहे हों, कटाक्ष देश है, जिन्होंने उस उनको देखा इस प्रकार से, करुण भरी दृष्टि से देख रहे हों, इन को जो देखा उन्हें क्या आंखों की सार्थकता है, और अन्य लोगों की आंखें मोर पंख की आंख है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें फिर से बतलाया था उस दिन जय ब्रजेश सत्यो, बलदेव जी का भी ब्रजेश होना ठीक है क्योंकि अपने पिता वसुदेव देवकी को वो नहीं जानते, वो इन्हीं को अपना माता के पास। दूसरी बात, गोपियों को, गोपियां यहाँ पर अवस्था अवलंबन कर रही हैं, वो कृष्ण को चाहती हैं किंतु दूसरे जो सुन रही हैं उन लोगों को ठगने के लिए ये कह रही हैं। ब्रजेश सुतयो, दोनों ब्रजेश, किंतु अनु जो पीछे चल रहे हैं उनके लिए, जिनके मुख पर बंसी, कृष्ण के हाथों में बंसी के अतिरिक्त सिंगा भी है, सिंगा वो अधिक बजाते हैं, और कृष्ण उनके पीछे जो चल रहे हैं कुछ दूरी पर, जिनके हाथों में बंसी है, अधरों पर विराज रही है, और वही देख रहे हैं, बड़ी प्रेम भरी कटाक्ष से देख रहे हैं। उसको यदि कोई इसने देखा तो आंखें सार्थक है, अन्यथा सार्थक नहीं। अथवा ब्रजेश सुतयो, बतलाया सुताश्च सुतयो, नंद बाबा के पुत्र सुत और विश्वभानु के सुता दोनों परस्पर मिले हैं, और राधा जी उनके हाथों से बंसी अनु पीछे, पहले कृष्ण बजा रहे हैं, पीछे से उन्होंने ले ली और बजा रहे हैं, और उसके रंध्रों पर कृष्ण ही नहीं तो ऐसे कर रहे हैं, या कृष्ण ही कर रहे हैं और वो बजा रहे हैं अनु बेनिजिस्टर, और परस्पर को देख रहे हैं। इस कटाक्ष का जो मोक्षण आता तो ऐसे कटाक्ष भरी प्रेम भरी दृष्टि की तरफ में उन्होंने जिन्होंने देखा उन्हीं के जीवन की साथ। फिर कह रहे हैं ये किस लिए, अपने माधुर्य का वर्णन कृष्ण सोच रहे हैं, ये असल में है ये चैतन्य महाप्रभु जी का विचार, कृष्ण का माधुर्य क्या है और राधा जी किस रूप में लेना चाहती हैं, ये भी वाक्य श्रीमती राधिका का ही समझो। तो गोप्यस्तप, अब ये बतला रहे हैं मथुरापुरी की वो जो रमणिया हैं, जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए और गली में जब विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते करते उसके उसमें पहुँचे हैं सभा में, जहाँ पर कि चारण मुष्टिक इत्यादि खड़ा है और वो हाथ पंजा मिलाने के लिए तैयार है, और कृष्ण को पकड़ करके खींचा अखाड़े की तरफ में, उसमें स्त्रियाँ हाहाकार कर उठी। कृष्ण का शरीर अत्यंत कोमल मधुर इत्यादि देखा, और मुष्टिक और चारण का शरीर वज्र के समान बहुत लंबा चौड़ा देकर के भयभीत हुए। उसी कृष्ण को अभिदुषांग कंस और दूसरे लोग वज्र के समान, कोई मृत्यु के समान, कोई यम के समान, कोई तत्तम परम योगी नाम, ये सब लोग उनको देख रहे थे। और ये गोपियां कैसी देख रही हैं, गोपियां उनको परम प्रियतम के रूप में देख रहे हैं, कामदेव के रूप में कृष्ण को, है ना। तो इसलिए कृष्ण को वो देख करके और चिंतित हो गई, और कहीं इस सभा में से चला जाना ही धार्मिक लोगों का कर्तव्य, जिस सभा को अधर्म प्रवेश कर जाता है वहां पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर इतने लोग हैं, कोई मना नहीं कर रहे कि यह युद्ध नहीं होना चाहिए, बराबरी के समान होता है, और यहाँ पर तो ये कुछ दूसरा ही षड्यंत्र आता है, इसको बच्चों को मारने के लिए इन्हें लगाया गया, इसलिए हा है करते हुए और कर रही है, जो हमने ये देखा तो हमारा सौभाग्य है, किंतु गोपियों जैसा सौभाग्य नहीं है। एक शेर को किसी पिंजरे में बंद देखा, वो क्या होता है ना,
सर्कस
इत्यादि, दुबला पतला कर करके बिजली का तार ले करके और घुमाते हैं, और एक वन में दहाड़ रहा है सिंह, उनको देखो, दोनों में अंतर होगा। तो यहाँ पर ब्रज में गोपियों ने जो कृष्ण को जो देखा, इसलिए वही धन्य है, हम धन्य हैं, किंतु वो ऐसी धन्य नहीं। गोप्यस्तप किमाचरण जदमुष्मा रूपम लावण्य सार समोधनन्न सिद्धम दृग्भि पिबंत अनुसवा अभिनवम दुराप एकांत धाम जससा श्रिय ऐश्वर्य। गोप्यस्तप, किम आचरण और गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया था, ऐसा कौन सा आचरण किया था, यज्ञ तप दान तीर्थों में स्नान आदि कौन सा ये सब कुछ किया था जो अमुष्म रूपम, ये सामने कृष्ण को देख रहे हैं, बलदेव को देख रहे हैं, कृष्ण को देख करके कृष्ण के इस रूप को वो देखती थी कैसे लावण्य सार असमोधनन्य विश्व ब्रह्मांड के गोलोक वृंदावन का जितना लावण्य है उसका ये सार है, एक साथ में ये एकत्रित किया गया है कृष्ण का रूप असमोर्ध असम ऊर्ध विश्व में इसकी कोई तुलना नहीं है। नारायण सबसे सुंदर है, श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहि समत्य गजस जन श्यामस्य बाम्बुज बद्धतनुम कदाहम ताम इंद्री बिरुल। तो ये नारायण बड़े सुंदर हैं, लक्ष्मी के प्रियतम हैं, किंतु इनसे बहुत अधिक कृष्ण का सुंदर। राम बड़े सुंदर हैं, दुर्बादल श्याम हैं, किंतु इनसे भी अधिक सुंदर कृष्ण है। लावण्य सारा जितना लावण्य है उसका सार और असम ऊर्ध्व असम ऊर्ध्व उनके बराबर ही नहीं है, तो ऊर्ध्व ऊंचा उठने की तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई सौंदर्य नहीं। अनन्य सिद्धम न अन्य सिद्धम, अन्य किसी चीज के अपेक्षा नहीं, आभूषण स्नान करना श्रृंगार करना कपड़े पहनना इसके अधीन नहीं। बहुत से काले कल उठे हैं पाउडर लगा करके हल्दी लगा करके और सुन के सुंदर आभूषण और अच्छे अच्छे कपड़े पहना दो बर बन जाता है तो कुछ सुंदर लगता ही है, कृष्ण के लिए नहीं। कृष्ण का अंग कैसा है, भूषणम, यह उनका अंग भूषणों का भी भूषण है, इसलिए कृष्ण यदि कोई कपड़ा ना पहने तो इसको कहते हैं विच्छिति। विच्छिति मैंने क्या, कोई भी आभूषण धारण नहीं किया और गौओं के चरण से उठे हुए रज को से वो उनका मुखारविंद लगा हुआ है धूली धूसरी तो भी अपूर्व सुंदर दिखते हैं, एक और तरह का सौंदर्य होता है। और इधर में यदि कोई स्नान न करे हो और शाम को लौटे गोधूली से देखो तो उसका चेहरा ये कैसा लगता है। कृष्ण या महाप्रभु पढ़ने जा रहे हो और यहाँ पर एक काली का बिंदु लग गया तो देखो कैसा सुंदर अद्भुत लग जाएगा, इसलिए किसी उनका सौंदर्य किसी के अधीन नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं सिद्ध है। कृष्ण का रूप कृष्ण का गुण कृष्ण का शरीर कृष्ण का सभी कुछ वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु नारायण राम द्वारकाधीश ये सब अपेक्षा रखते हैं, किसका, ये कृष्ण का, इसलिए कृष्ण स्वयं रूप हैं और ये लोग कोई तदेकात्म रूप कोई विलास रूप कोई प्रकाश कोई वैभव इसलिए कृष्ण ही सबसे अनन्य सिद्ध हैं। दृग्भिक् पिबन्त अनुसवम अनुसवाभिनव नवम दुराप एकांत धाम जसस श्रिया दृग्भिक् पिबन्ति अनुसव अनुसव माने होता है मदिरा आसव अनुसवा भिनम नए नए रूप में नए नए आस्वाद जब पीता एक घुट पिया दूसरा घुट पिया और स्वाद तीसरा घुट और स्वाद इस तरह से कृष्ण का यह जो रूप है आंखों से पी रहे हैं और कैसे मदिरा पान जैसे होता है उस रूप को पान करके नए नए रूप में उसका आस्वादन होता है। दुराप एकांत धाम जस्स दूसरों के लिए दुह आप प्राप्त नहीं हो सकता दूसरों के लिए नहीं, यह गोपियों के लिए केवल है, इसलिए गोपियों ने कौन सी स्थिति तपस्या की आराधना की जो कृष्ण का यह रूप उनको दर्शन करने के लिए मिला। एकांत धाम यह जो रूप उनका है यह कैसा है, एकांत धाम जसस जसस श्रीय ऐश्वर्यस जस और श्री समग्र ऐश्वर्य ये तीन उपलक्षण में कहे गए, बाकी तीन को रख करके अर्थात तीनों के लिए अर्थात छओं के लिए ऐश्वर्य समग्रस्य विजस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्ना भवति। ये सभी ऐश्वर्यों के लिए कहा गया, ये सबका एकांत धाम, धाम माने अर्थात जितना सौंदर्य है, जितना ऐश्वर्य है, जितना जस है, श्री माने रूप लावण्य है, ये सबका एकांत धाम है, खजाना है, आगार है, इसी से बाकी सब ईश्वर लोगों को नारायण इत्यादि जितने अवतार हैं सबको यही सब। जितने भी अवतार हैं बड़े सुंदर होते हैं, जैसे भगवान का मत्स्य अवतार परम सुंदर, वो मकरी मकराकृत कुंडल, यहाँ पर मकरा का मकरी का आकृत कर देते हैं, मकरा माने एक होता है मकरसा ना ऐसा, और एक होता है मछली, एक होता है मगर, मगर होता है ना मगर से मकर, ये सभी उसके तंग किंतु इसमें मछली सबसे उपयोगी सबसे सुंदर होती है। भगवान का मत्स्य रूप, भगवान का शुक्र रूप कैसा है अद्भुत, भक्त लोग देखते ही उसकी आराधना करने में लग जाते हैं। हैं बामन किंतु सुंदर कितने हैं, बलि महाराज भी उठ करके खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। परशुराम रूप, सभी रूप वैसे ही, राम रूप परम अभिराम रूप है, इस तरह से सभी रूपों को समझे। किंतु सबका मूल एकांत धाम कौन है, कृष्ण रूप, कृष्ण से ही सब रूप आ रहे हैं। अपूर्व माधुरी कृष्ण, अपूर्व तार बोल, कृष्ण के रूप की अपूर्व माधुरी है और अपूर्व तार बल, उसका बल भी आकर्षण बहुत बल है। ताहर श्रवण मन है टलमल, उनके श्रवण में मन टलमल हो जाता, हम लोगों का हो रहा है ना खूब टलमल अनर्थग्रस्त जी, किंतु इसमें जितना जिनका अनर्थ थोड़ा सा दूर हो रहा है उतना उस पर प्रभाव करता, उसको आकर्षण करेगा, और जिस पर मोर्चा लगा हुआ है जिस पर लोहे पर उसको आकर्षण नहीं करेगा। कृष्ण माधुर्य कृष्ण उपजय लो, कृष्ण का माधुर्य इतना सुंदर है कि अपने आप कृष्ण को भी इसको प्राप्त करने के लिए उपभोग करने के लिए लालसा जग उठती है। सम्मुख आस्वादित नारे मोने रहे क्षो, कृष्ण अपनी परछाई में दर्पण में जल में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, बहुत ही सुंदर हैं, किंतु बहुत चेष्टा करके भी राधा जी जैसे उस रूप का आस्वादन करती हैं ये नहीं कर सके। राधा जी की बात क्या, कोई एक साधारण सी गोपी है उसके समान भी ये अपने उस रूप को उपभोग नहीं कर सके। कारण क्यों, वो जो चीज से वो उनके पास है जिसे आस्वादन करती है उनके पास में नहीं। जैसे मान लिया कि सुंदर सुंदर खाने की चीजें हैं, टेस्टफुल हैं, बहुत सुंदर सुंदर, और भूख नहीं है तो आज जिसको इसी में से किसी को भूख है उसके लिए बड़ा टेस्टफुल लगेगा, आज जिसको भूख नहीं उसको टेस्टफुल नहीं लगेगा। गोपियों को वो भूख है, भूख माने महाभाव है, कृष्ण का जो महाभाव है दूसरों विषय जाति है, गोपियों का आश्रय जाति जो महाभाव इत्यादि है वो नहीं है, इसलिए उसको आस्वादन चेष्टा कर रहे हैं। अच्छे हमको देख करके राधा जी मूर्छित हो गई, क्यों हो गई, मैं राधा जी को देख करके या अपना रूप देख करके तो मूर्छित होता नहीं, क्यों है? फिर विचार करके देखा आश्रय जाति भाव हमारे अंदर में नहीं, ये आश्रय जाति सबसे श्रेष्ठ भाव है किस में, इसलिए वो भाव यदि हमको मिल जाए तब हम आस्वादन कर सकते, इसी के लोभ से वो चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरी बात आज यही तक रहे। लाखों जन्मों से हम लोग भगवान अभी तो आप लोग महिला हुई हैं, हो सकता है कि इसके पहले सुअर भी हुई हो, आगे भी स्वर्ग के लिए तैयार रहना होगा यदि भगवान का भजन न करो। गधे यदि भगवान का भजन नहीं होगा, सुअर कभी गधा कभी कुत्ता कुत्ती ऐसे ही जन्म, कभी स्वर्ग में भी देवी के रूप में जन्म होगा, कहीं कुछ होगा। गुरु के ज्ञान नहीं, ये समझा ना? तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमको ज्ञान दे सके, जो हम संसार में जैसे लिपट पिपट रहे हैं, और गुरु भी ऐसा ही संसार में रपटने वाला हो तो वो क्या शिक्षा देगा? जो स्वयं भजन करने वाला है ऐसा ज्ञान दे सके जो हम सबको भगवान के चरणों में लगा दे, तो ऐसे गुरु से ही तो होता है ना ज्ञान। सत्संग, सत्संग में यदि शुद्ध शुद्ध बातें नहीं कहेगा, केवल नमक और मर्च मिसाला लगा करके भागवत की कथा कहे, भागवत की कथा करा गई और मिर्च और इत्यादि बना करके लोगों को मनोरंजन करने के लिए बात करते, शुद्ध बातें नहीं कहेंगे। भागवत में गीता में जो त्याग और वैराग्य की बातें कहीं वो कहते हैं नहीं बताए, कपिल देवहूति की बात नहीं कहेंगे, अम्बरीश महाराज की बात नहीं कहेंगे, वो बातों को चोखी चीकनी चुपड़ी बता करके कहेंगे। ऐसे सत्संग में कुछ नहीं होगा, जो कि सत्संग कैसा होना चाहिए जैसे अस्पताल में थिएटर रूम में ऑपरेशन होता है, गुरु ऐसा होना चाहिए। मनोरंजन करने वाला गुरु गुरु नहीं, नहीं तो फिर वहां पर सत्संग में मोती नहीं बिखरेगी। यदि सत्संग हमने 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष सुना और मन जहां संसार में आसक्त था वहीं पर लगा रह गया तो क्या हुआ? कुछ उन्नति तो होनी चाहिए ना।